आर्य की आशुतोष और रमनदीप से जो भी बातचीत हुई उसे ध्वनि ने भी सुना। उसे ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई कि आर्य ने अपने पापा की शर्त मानते हुए अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दी थी। वो उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी नज़रों को भांपते हुए आर्य ने कहा, क्या इस तरह मुझे लुक क्यों दे रही हो? मैं न सच में पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी तुम्हें एली से प्यार होता है तो तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते, कभी तुम्हें शिवी पसंद आ जाती है तो तुम सब कुछ भूलकर उसके पीछे जाने लगते हो, और अब ये अरेंज मैरिज, कुछ बताएगा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कन्फ्यूजन के मारे ध्वनि को गुस्सा आ रहा था। आर्य ने हंसकर जवाब में कहा, काम डाउन, वरना हॉस्पिटल में एक और बेड बुक करना पड़ेगा। पर तू ऐसे उन्हें हाँ कैसे कह सकता है? तुझे तो ओबेरॉय मेंशन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर वहाँ जाने के लिए तू शादी तो करने को तैयार हो गया। सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही है कि तुम्हारी पापा ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालने के लिए हाँ कह दी। वही तो बात है, वो मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता उस घर में रहने वाले हरेक लोगों को मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। उन्हें लगता है वो अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाकर मुझे कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी शादी के बाद भी कैरिन से रिश्ता रखेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने उन्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझा था। आर्य को आशुतोष पर हंसी आ रही थी। जब तुम्हें सब पता है तो फिर तुम क्यों उनके जाल में फंस रहे हो? फंस नहीं रहा, बस फंसने का दिखावा कर रहा हूँ। मुझे उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड या वाइफ से दिक्कत नहीं थी, पर उस लड़की ने मेरे कमरे में कदम रखा और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की। मुझे वो लड़की उस घर में नहीं चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे ड्रामा ही क्यों ना करना पड़े। चिंता मत करो, उनकी पसंद की हुई लड़की को भगाने में मुझे एक मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। आर्य ने बातों ही बातों में उसे कैरिन की हरकत के बारे में बता दिया। और ये सब कब हुआ? तू मुझे अब बता रहा है कि उसने तुझे सिड्यूस करने की कोशिश की? हाँ, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं था। आर्य बिस्तर पर आराम से आंख बंद करके लेट गया और सब कुछ सोचने लगा। इसको समझने लगी तो मेरे दिमाग के तार भी हिल जाएंगे। तुम अपने पर फोकस करो ध्वनि, ये खुद ही निपट लेगा हर चीज से, ध्वनि ने बड़बड़ाकर कहा और पास में रखा एप्पल उठाकर खाने लगी। कमरे में गहरी शांति पसरी थी। आर्य आंख बंद करके अपने परिवार के बारे में सोच रहा था तो वहीं ध्वनि पास में फोन यूज करते हुए एप्पल खा रही थी। इन सब के बीच शिवी वहां आई। उसने ऑफिस के बाद आर्य से मिलने का कहा था और ऑफिस खत्म होते ही वो घर जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। आर्य को आंख बंद कर लेटे देखकर शिवी ने दबी आवाज में कहा, आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, ध्वनि एप्पल खाते हुए खड़ी हुई। पूरे दिन से इसके साथ हूँ और अब बोर हो गई हूँ, तुम ऐसा करो कुछ देर इसके पास बैठो, मैं बाहर घूम कर आती हूँ। शिवी की आवाज सुनकर आर्य ने अपनी आंखें खोल ली। जैसे ही ध्वनि बाहर गई वो उठकर बोला, तो तुम्हारा ऑफिस खत्म हो गया? तुम्हारे उस खड़ूस बॉस ने डांटा नहीं तुम्हें? नहीं, वो आज किसी काम की वजह से ऑफिस से बाहर थे। तुम अब कैसे हो? शिवी ने उसके पास बैठते हुए पूछा। जैसे पहले था वैसा ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बेवजह मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है, आर्य ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। कुछ भी बेवजह नहीं होता है, उस दिन तुम अचानक से बेहोश हो गए, अब जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना काम संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी कोई एम्प्लॉई चुप चुप कर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगे, शिवी ने हंसकर कहा। हाँ, अब तो सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, डोंट वरी, मेरे ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के पर्सनल फ़ोन उनके वर्किंग आवर में उनके पास नहीं होते। शिवी को सब बताते हुए अचानक आर्य को कुछ सूझा और वो बोला, हे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो? वहाँ सैलरी भी अच्छी है और इस तरह हम रोज़ एक दूसरे से मिल भी पाएंगे। नहीं, शिवी अटकने में बोली, ना बाबा ना, मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ इतने रूल्स और रेगुलेशन हो। कम ऑन, मेरी कंपनी में हर एक तरह की फैसिलिटी है, तुम एक बार इंटरव्यू देकर ट्राई तो करो। मैंने कहा ना, नहीं, मुझे अपनी कंपनी पसंद आ गई है। शिवी के बार बार ना करने के बाद आर्य के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अच्छा, फिर बताओ तो सही, तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो? उसने पूछा। हाँ, ताकि तुम मुझे अपने काम से निकलवा सको। देखो, मैं तुमसे मिलने आई थी, ना कि अपने ऑफिस की बात करने। तुम्हें यही बातें करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, शिवी ने इरिटेट होकर कहा। ओके, ठीक है, अब से नहीं करूँगा, आर्य ने बच्चों जैसा मुँह बनाया। मेरा बहुत मन कर रहा है मैं बाहर किसी अच्छी जगह पर जाऊँ, पर इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। अच्छा, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? शिवी ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आर्य ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद शिवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने हॉस्पिटल की ड्रेस पहन रखी थी। शिवी ने इधर उधर देखा कि उनकी बात को सुन तो नहीं रहा। वो आर्य के कान के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, अच्छा, तुम्हारे वो कपड़े कहाँ हैं जो कॉन्सर्ट के टाइम तुमने पहन रखे थे? वो लॉन्ड्री में गए थे, उसके बाद पेशेंट के सामान के साथ यहीं स्टोर रूम में पड़े होंगे, पर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? आर्य ने हैरानी से पूछा। जाओ जल्दी से कपड़े बदल कराओ, हम बाहर जा रहे हैं। शिवी की बात सुनकर आर्य की आंखें बड़ी हो गई। वो इस तरह कभी बिना प्लानिंग के बाहर नहीं गया था, पर साथ ही उसे शिवी के साथ भी रहना था। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने तुरंत स्टोर रूम में जाकर कपड़े चेंज किए। अपना मुंह नीचे रखना वरना सीसीटीवी में तुम्हारा फेस कैद हो जाएगा, शिवी ने दबी आवाज में कहा और आर्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। उसका साथ आर्या के दिल को सुकून दे रहा था। उसे उस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो कॉलेज में हो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए बंक मार रहा हो। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले और शिवी ने एक कैब बुक की। इंडियाना रेस्टोरेंट ले चलो, शिवी ने कैब ड्राइवर से कहा। लेकिन इंडियाना क्यों, वो तो यहाँ से बहुत दूर है, आर्या ने कहा। हाँ जानती हूँ, पर वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तुमसे बहस होने के बाद मैं वहाँ नहीं जा सकती। जब भी वहाँ जाने का सोचा, बाहर से ही वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज मुझे अजीब नज़रों से घूरते हैं। अब तुम्हारे साथ जाऊँगी तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों दोस्त बन गए हैं, फिर वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे, शिवी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। बस इतनी सी बात, पहले बताया होता, मैं उन्हें बोल दूंगा कि आज से वो तुमसे तुम्हारे किसी भी मील का पेमेंट ना ले। तुम जब चाहे तब वहाँ जा सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए होता। तुमने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था, उसकी भी मैं पेमेंट कर दूंगी। आगे से ये मत कहना। अब चलो आओ जल्दी से, शिवी ने आर्या का हाथ पकड़कर उसे कैब के अंदर खींचा। कुछ ही दिनों में शिवी ने हर तरीके से आर्या का दिल जीत लिया था। पहले भी बिजनेस पार्टीज या सेलिब्रिटी पार्टीज में कई लड़कियों ने उसके पैसों के चलते उसके पास आने की कोशिश की थी, पर शिवी उनमें सबसे अलग थी। रात के 10 बज रहे थे, नंदिनी जिम के साथ किसी बिजनेस मीटिंग से लौटी थी। आशुतोष से हुई बातचीत के बारे में उसने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया था, पर अब वो देर भी नहीं करना चाहती थी। जिम, डोंट यू थिंक अब हमें बच्चों को घर बुला लेना चाहिए, नंदिनी ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी।
मैंने भी इस बारे में सोचा था, फिर लास्ट टाइम नील ने जो किया वो याद आ जाता है। जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता उसे शिवी की परवाह है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक मैं उन दोनों को ही यहाँ नहीं बुलाने वाला, जिम ने जवाब दिया। अचानक उन्हें एहसास हुआ सारी गलती नील की थी और उन्होंने सज़ा शिवी को भी दे दी। उन्होंने तुरंत वापस कहा, देखा जाए तो शिवी में काफ़ी चेंज आया है नंदिनी। हम ऐसा करते हैं, शिवी को एक हफ्ते के लिए यहाँ बुला लेते हैं, तुम्हें उसकी याद आती होगी ना? आएंगे तो दोनों बच्चे यहाँ रहने के लिए आएंगे। अगर मैंने सिर्फ शिवी को बुलाया तो नील को ये ना लगे मुझे सिर्फ अपनी बेटी से प्यार है। तुम्हारी बात भी सही है, ठीक है फिर हम उनको थोड़ा और टाइम देते हैं, जिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर नंदिनी के पास आकर उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प करने लगे। मैं आशुतोष ओब्रॉय से मिली थी। जैसे ही नंदिनी ने बताया, जिम के हाथ वहीं रुक गए। आई होप ये बिजनेस मीटिंग के अलावा और कुछ ना हो, जिम ने सख्त लहजे में कहा। नो, इट वॉज नॉट अ बिजनेस मीटिंग। उन्होंने सामने से अपने बेटे आर्य के लिए हमारी शिवी का हाथ मांगा है। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, पर मैंने उन्हें हाँ कह दिया है। नंदिनी की बात सुनकर जिम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उससे दूर हो गए और बेड पर आकर बैठ गए। उसे चुप देखकर नंदिनी उसके पास आकर बैठी और कहा, ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो रिएक्ट कीजिए। मैं क्या बोलूँ, जब तुमने खुद ही सारे डिसीजन ले लिए हैं, शायद शिवी की तरह तुम भी मुझे उसका फादर नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है जिम, आप शिवी के बिहेवियर को नहीं जानते हैं, उसके हिसाब से आर्य बिल्कुल परफेक्ट है, नंदिनी उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। आग को पानी से बुझाया जाता है, आग प्रपास और आग लाकर रख देगी तो वो और बढ़ जाएगी, ना कि शांत होगी, तुम वही करने जा रही हो। शिवी में गुस्सा और दर्द है तो तुम उसे उस इंसान के सामने लाकर खड़ा कर रही हो जो गुस्से और दर्द का सैलाब है, तुम नहीं समझोगी नंदिनी। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उसे अच्छे से जानते हो, नंदिनी ने चौंकते हुए पूछा। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं उससे पहले भी एक दो बार बिजनेस मीटिंग में मिल चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे तो बाद में मनाना, पहले अपनी बेटी को तैयार कर लो, वो तैयार हो जाएगी शादी के लिए तो फिर मुझे कोई हर्ज नहीं है, जिम ने खुद को सामान्य करके कहा और बाथरूम में चले गए। नंदिनी अभी भी हैरान थी, जिम जिस तरह से आर्य के लिए बात कर रहे थे उससे साफ था कि वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं जिम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, अगर वो आर्य के बारे में अच्छे से जानते हैं तो मुझे बता क्यों नहीं देते, नंदिनी ने अपने मन में कहा। वहीं जिम बाथरूम में था और उसके मन में कई बातें चल रही थीं। वो आर्य और शिवी के रिश्ते से परेशान था। आई विश कि मैं तुम्हें बता पाता कि मैं आर्य सिंह ओब्रॉय को कैसे जानता हूँ, तुम इन सबसे दूर रहो, उसी में हम सबकी भलाई है। फिलहाल के लिए मुझे कैसे भी करके तुम सबको उससे दूर रखना है, कहीं गलती से भी उसे सच का पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर देगा। जिम शावर के नीचे था और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था।